Om Shanti. एक महिला जो किसी जमाने में बहुत अमीर थी, अचानक एक दिन उसका पति मर गया, और जैसे ही पति मर गया घर की परिस्थितियां बदल गई, दुख आने लगा, दुख बढ़ने लगा, पैसे जो थे वो धीरे धीरे खत्म होने लगे, कर्ज लेना पड़ा, लेनदारों की लाइन, और धीरे 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 बढ़ता हुआ तनाव, दुख, और वो एक एक चीज जो उसके पास थी धीरे धीरे जाती रही। उसका एक ही छोटा सा बेटा था, और वो सोचने लगी अब मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा, क्योंकि रोज लेनदार आते और घर का सामान, वस्तुएं, चीजें ले जाते। कमाई का कोई साधन नहीं था, परंतु उस महिला के पास एक ऐसी वस्तु थी जिसे वो खोना नहीं चाहती थी, किसी को देना नहीं चाहती थी, क्योंकि उनके पुरखों से वो प्राप्त वस्तु थी, और वो वस्तु थी एक बहुमूल्य हीरा, और वो नहीं चाहती थी कि वो लोग आ जाए, वो हीरे को भी ले जाए। इसलिए एक दिन उसने क्या किया, उसके बेटे का जो शर्ट कमीज उसकी बाहों में स्लीव में वो सिल दिया, पर ये अपने बेटे को बताना भूल गई, बेटा अभी बहुत छोटा था, और धीरे धीरे बीमार पड़ी और एक दिन मर गई। उसके मरने के बाद तो विपन्नता, दरिद्रता और बढ़ी, और बेटा अकेला पड़ गया, अनाथ, घर चला गया, सब कुछ चला गया, और वो क्या करता, काम करने लगा, काम ढूंढने लगा, मजदूरी करने लगा, कभी खेत, कभी कहीं तो कहीं कहीं। एक बार किसी खेत में वो काम कर रहा था और बहुत दुखी था, मां नहीं रही, पैसे नहीं, और वो जमीन खोदते खोदते वहां झाड़ियां थी कुछ, और उसका वो कमीज वहां अटकता है, वो खींचने की कोशिश करता है, नहीं निकलता है, जोर से खींचता है, वो हीरा गिरता है। वो हीरा उसके पास ही था, पर उसे पता नहीं था वो हीरा उसके पास है, और वो हीरा उसे विरासत में मिला हुआ था, पर उसे खबर नहीं थी ये हीरा मेरे पास है। इसलिए दुखी था, उदास था, मेहनत कर रहा था, दर बदर की ठोकरें खा रहा था, और एक दिन उसे वो हीरा मिल जाता है, और जैसे ही हीरा मिलता है भाग्य पलट जाता है। शायद उसी तरह शायद भाग्य भी हमारे कमीज के स्लीव में सिल के रखा है किसी ने, आज फाड़ के देख ही लेना, और हम भटक रहे हैं, दुखी है, दरिद्रता में, आध्यात्मिक दरिद्रता, स्पिरिचुअल पॉपरी, पॉवर्टी, जो भाग्य हमारे निरंतर साथ है, परंतु हमें खबर ही नहीं कि हमारा ये भाग्य है, और जो भगवान ने, जो कि हमारा बाप है, उस वो दे चुका है। आज की अव्यक्त वाणी में भगवान ने कहा है, बाप तुम्हें सदा देखना चाहते हैं, क्या नहीं, यथा शक्ति नहीं, बाप तुम्हें नंबर वन देखना चाहते हैं, नंबर वार नहीं। तो बाप ने देते समय सबको समान दे दिया, फिर भी लेते हुए सब क्या हो गए, नंबर वार हो गए, क्यों, क्यों, शर्ट देखा ही नहीं खोल के, भाग्य वही टंगा हुआ था सिला हुआ, और मेहनत कर रहे थे, भटक रहे थे, काम कर रहे थे, मजदूरी कर रहे थे। बाबा ने कभी मुरली में कहा है तुम मजदूरी करते हो, बाप तुम्हें राजा बनाने आए और तुम करते क्या हो? मजदूरी। बाबा ने तुम्हें क्या दे दिया? इतना धन, टकसाल। टकसाल होता है ना, पैसे जहां बनते हैं, मिंट। तुमने भाग्य की टकसाल दे दी है और तुम क्या कर रहे हो? नौकरी की टोकरी, मजदूरी। क्यों? तो क्या करना है आज? अपनी शर्ट को फाड़। वहां पर भाग्य का खजाना छिपा हुआ है। तो बाप, तीन टाइटल दिए आज बाबा ने अपने आप को। कौन से? अरे अपने आप को बाबा ने अपने आप को क्या कहा आज? वो दाता है, भाग्य विधाता है और विधाता है। तीनों में क्या अंतर है? आशीष भाई, दाता अर्थात देने वाला, कोई भी बन सकता है दाता। तो जो देता है उसे दाता कहा जाता है। भाग्य विधाता अर्थात जो भाग्य बांटता है। ये टाइटल किसको दिया है शास्त्रों में? ब्रह्मा को ये टाइटल दिया हुआ है। और विधाता अर्थात जो सृष्टि का रचयिता है, सृष्टि का नियंता है। विधाता अर्थात भगवान, बिस्टोवर, जो विधि विधान बनाता है। फिर विधाता शब्द भगवान के लिए प्रयोग किया जाता है, भाग्य विधाता शब्द भी भगवान के लिए प्रयोग किया जाता है, पर ब्रह्मा के लिए भी प्रयोग किया जाता है। और पहला दाता, तो वो दाता है, वो विधाता है और वरदाता। वरदाता भी एक शब्द है। वरदाता अर्थात वरदान, लुटाने वाला, देने वाला। तो आज कौन किसको देख रहा है? भाग्यवान, भगवान के भाग्यवान बच्चों को देख रहा है। और भाग्य की तुलना किससे की है भगवान ने? किससे की है? भाग्य की कम से कम 12 चीजों से तुलना है। पहला, इधर से चालू करते हैं, भाग्य की तुलना ज्योति गोली, वो नहीं कह रहे। भाग्य की तुलना किससे की है वो बतानी है। पूरी मुरलियों में सारी अव्यक्तवाणियां 69 से अब तक की। हाँ, पहला आज की मुरली से चालू करते, आपका हो गया लकीर। अभी दूसरा, हाँ, अरे भाग्य की तुलना किससे की है? भाग्य का सितारा। तो तुम्हारा सितारा निरंतर चमकता रहे। तीन प्रकार के सितारे किसी मुरली में बाबा ने कहा। एक है वो सितारे जो सफलता के सितारे है, एक वो सितारे है जो उम्मीदों के सितारे, तीसरे सितारे जो है वो सफलता के सितारे, पुच्छल तारे भी है कुछ कुछ, आशा के सितारे, उम्मीदों के सितारे। तो सबसे टिमटिमाते सितारे, तो सबसे पहले वो एक मुरली में तीन बोले थे, हर बार उसका अलग अलग होता है। तीसरे मुरली में आज तीन बातें, कल चार बातें, कब पांच बातें। कभी आंखों में वो देख रहा है, मस्तक में वो देख रहा है, होठों पे वो देख रहा है, गालों पे वो देख रहा है, चरणों में वो, कदमों में वो, हाथों में वो। ये एक दिन का, दूसरे दिन चेंज। तो भाग्य अर्थात सितारा, तुम्हारा सितारा चमकता रहा है। भाग्य अर्थात सूर्य, भाग्य का सूर्य उदय हुआ है। ये सूर्य निरंतर उदित रहे, कभी भी ढल ना जाए। फिर लकीर, फिर कलम। भाग्य क्या है? भाग्य विधाता ने तुमको क्या दे दिए? कलम। क्या करो इससे? खींचते रहो। कितना खींचते रहो या लिखते रहो? दोनों चीजें करते रहो। तो कलम से लिखते जाओ, लिखते जाओ। किसकी तकदीर लिखनी है? पहले अपनी लिखो, फिर दूसरों की भी लिखो। उसके बाद में भाग्य क्या है? चक्र है। ये भाग्य का चक्र घूमता रहता है। जैसे समय का चक्र है वैसे भाग्य का चक्र है, जैसे सृष्टि का चक्र है वैसे भाग्य का भी चक्र है। फिर भाग्य द्वार है, तुम्हारे भाग्य के द्वार खुले हैं। उसके बाद में भाग्य क्या है? भाग्य खजाना है। उसके बाद में भाग्य क्या है? वरदान है। उसके बाद में भाग्य का खेल, भाग्य एक खेल है। और भाग्य क्या है? तस्वीर है, मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले। तुझे क्या करूं? दिल याद करे। तो भाग्य तस्वीर है। और भाग्य क्या है? भाग्य का पिटारा मंजूषा, भाग्य ज्योति है, दीपक है, प्रकाश है, और भाग्य क्या है मंजू बहन? भाग्य क्या है आज की मुरली से? अभी अभी सुना के आए ना, भाग्य अधिकार है और वर्षा है आज की मुरली से। तो वर्षा सहज मिलता है, वर्षे के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। कोई बच्चा मेहनत करता है क्या? तो भाग्य क्या है? अधिकार है। भाग्य क्या है? वर्षा है। तो ये अधिकार है, ये वर्षा है। और भाग्य क्या है संसार में? भाग्य तिलक है, भाग्य सुहाग है। बाप तुम्हें भाग्य का तिलक लगाने आए हैं। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, स्वयं रघुवीर आए हैं। तुलसीदास हमें बैठे हुए चंदन घिस रहे थे, घिस घिस के टिप्रिया घिस गई। तो आज की मुरली भाग्य पर है। इस संसार में सबसे श्रेष्ठ भाग्य हमारा है। क्यों? क्यों? भाग्य में दादा तुम्हारी मुट्ठी में, इस समय जेब में देखो कौन है। एक जेब में क्या भरा है? अच्छा, सभी में भरा है। और तुम मास्टर भगवान बन गए। और देवेंद्र भाई, भाग्य क्या है तुम्हारा? क्यों भाग्यवान बन गए? बिन कौड़ी बात से। अच्छा, वो आज हमसे मिलने आ रहा है, वो आशीष देने आया है। अच्छा, भाग्यशाली के चाचा उसका है ना, उसकी भाग्यशाली। और विठल भाई, क्या भाग्य है हमारा? कहां से आवाज आई? तो बाबा ने कहा, इस भाग्य के साथ दो चीजें तुमको करनी है आज। ये भाग्य को धारण करना है और इस भाग्य को कर्म में लाना है, तो ही ये लकीर स्पष्ट होगी। आज बाबा भाग्य की लाइन, लकीर, रेखा देख रहे हैं। किसी किसी की रेखा स्पष्ट थी और किसी किसी की तो वो क्या होता है, दूर से देख रहे हैं। इसलिए नहीं, पर उसके पास वो मैग्नीफाइंग ग्लास है, उससे भी देखता है वो, पर उससे भी नहीं दिख रही है किस किस की। कभी बढ़ती है, कभी घटती है, कभी गायब हो जाती है, कभी चमकती है, कभी नहीं चमकती। उसकी हर एक की रेखा है, अपनी अपनी है। तो बाबा ने कहा, कोई कोई बच्चियों की रेखा बिल्कुल नहीं दिखती है, कोई कोई की बहुत ज्यादा स्पष्ट है। अगर भाग्य की इस रेखा को स्पष्ट करना है तो सबसे पहले इस वर्षे को धारण करो, इस वर्षे को, इस अधिकार को, इस भाग्य को अपने कर्मों में लाओ। मर्ज है कि इमर्ज है, शब्द का प्रयोग किया है बाबा ने। क्या है ये? मर्ज रहता है या इमर्ज रहता है? क्या रहता है? यथाशक्ति रहता है या सदा रहता है? नंबर वार रहता है या नंबर वन रहता है? नंबर वन शब्द तो नहीं आया मुरली में, पर हमेशा आता है। जितना सेवा में लगाएगा उतना बढ़ेगा और उतना भाग्य श्रेष्ठ होगा, लकीर स्पष्ट होगी। दो चीजें होगी, अगर इस भाग्य को लगाओ तो अपने कर्मों में। तो इस संसार में हम सबसे अधिक भाग्यशाली आत्मा है। क्यों? क्योंकि वो हमें मिल गया जिसे सारी दुनिया संसार ढूंढ रहा है। वो इस समय हमें, हमारे सम्मुख है, हमारे पास है। और आज का दिन सबसे विशेष दिन है। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान धरा पर अवतरित हो रहा है, आबू की वादियों में वो आ रहा है। किससे मिलने? हमसे मिलने। यदि किसी गांव में एक साधु आ जाए और कहे कि मैं 20 साल से तपस्या कर रहा था और अभी अभी मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं और दर्शन करके अभी आपके ही गांव में प्रथम आया हूं, तो क्या करेंगे गांव वाले? क्या करेंगे उसको? कितना स्वागत सत्कार होगा उसका जो कहे कि मैं अभी अभी भगवान के साक्षात्कार करके आया हूं, डायरेक्ट मेरी बात हुई है भगवान से। वो कहेंगे हमारी भी कराओ, हमारी भी कराओ, हमारा भी एक काम कर दो, दो काम कर दो, कुछ ना कुछ तो कहेंगे। दिल की डाली में कलियां खिलने लगी, जब निगाहें निगाहों से मिलने लगी, एक दिन इस तरह होश खो जाएंगे, पास आएंगे मदहोश हो जाएंगे, एक दिन आप ही यूं ही मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, झूमेगा आसमां गाएगी ये जमीन, एक दिन दिल की राहों में अपने लिए जल उठेंगे मोहब्बत के इतने दिए, एक दिन आप यूं मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था। ये गीत कभी बजा था अव्यक्त बाप दादा डायमंड हॉल में जब पधारे थे, मुरली पूरी हुई थी, भोग पूरा हुआ था, उसके बाद ये गीत बजा था। तो अपने भाग्य पर क्या करना है, इतराना है, नाज रख करना है, और क्या करना है, भाग्य पर, भाग्य को स्मृति में रखना है, और क्या करना है, भाग्य का डांस करना है।
एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा आसमां गाएगी ये जमीन, एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां गाएगी ये जमीन, मैंने सोचा न था।
भक्ति मार्ग में नौ खजानों का गायन है, नवनिधि। आज की मुरली में बाबा ने नौ निशानियां दिखाई है, बताई है, समझाई है, किन आत्माओं की, जिनकी भाग्य की लकीर लाइन स्पष्ट है, श्रेष्ठ है। सबसे पहली निशानी, उनको कर्म में खुद ही अनुभव होगा कि हम बहुत भाग्यवान हैं। इसका क्या अर्थ है, क्योंकि कर्म में क्या होगा, खुशी का अनुभव होगा, कर्म में अनुभव होगा, कर्म में नशा रहेगा। जैसे उस बच्चे को नशा रहता है, मस्ती रहती है कि मेरा बाप ने दिया है ये, वैसे ही कर्म में अनुभव होगा। कर्म में किस चीज का अनुभव होगा, भाग्य का अनुभव होगा। इसके क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, उसको हर कर्म में सफलता होगी, कर्म में उमंग होगा, उत्साह होगा, हर कर्म में लगन होगी, ललक होगी, हर कर्म में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी सेवाओं में, और उन्नति होगी, और क्या होगा, कर्म में सेवा भाव होगा, मेरापन, न्यारापन का अनुभव होगा, संतुष्टता का, अपने में नहीं फंसाएंगे, दादियों से मुलाकात में वो भी कहा है, निस्वार्थ कर्म होगा, और उनको देख के नहीं, पहले खुद का क्या है, वो सेकंड पॉइंट है आप जो कह रहे, उनको इंटरेस्ट होगा। एक होता है बिना इंटरेस्ट के काम करना, एक है इंटरेस्ट के काम करना, एक है मर मर के जीना, जी जी के मरना, प्रशंसा नहीं, वो दूसरा पॉइंट है। ये खुद को क्या अनुभव होगा, बाबा ने कहा है उनको भाग्य का अनुभव होगा अपने कर्मों में, ये फर्स्ट पॉइंट है भाग्यवान आत्माओं की निशानियों में, अर्थात दुआ और अंदर से खुशी, अंदर से हल्कापन, अंदर से स्ट्रेस नहीं, तनाव नहीं, टेंशन नहीं, दुख नहीं, और बोझ नहीं, व्यर्थ संकल्प नहीं। कुमारों को बाबा ने कहा, कुमारों के लिए सबसे बड़ा बंधन कौन सा है, व्यर्थ संकल्प का बंधन सबसे बड़ा है। जो बंधन में है अर्थात बोझ लेके चल रहा है वो धीमी गति से चलेगा, तेज नहीं चल सकता। और कुमार अर्थात तीव्र पुरुषार्थी, और कुमार अर्थात निर्बंधन, द्युत गति से चलने वाला। तो कर्म में ही अनुभव होगा कि, और एक अनुभव इसमें है कि ये मेरा भाग्य है कि मुझे ये सेवा दी गई है, मुझे ये सेवा केंद्र दिया गया है, मुझे ये डिपार्टमेंट दिया गया है, मुझे ये सेवा विशेष सेवा दी गई है। एक होता है कंपेयर करना कि इनको अच्छा मिल रहा है मुझे अच्छा नहीं मिल रहा है, इनका बॉस ठीक है हमारा ठीक नहीं है, इनके साथी सही है हमारे सही, हमारा टाइम ही ठीक नहीं है, नहीं तो हम बहुत पुरुषार्थ करते, रात रात भर जागना पड़ता है, कभी भी उठना पड़ता है, इनका अच्छा है 9 से 5 करो चलो, फिर कोई उठाता नहीं, फिर कोई कॉल नहीं, फिर कोई फोन नहीं, और हम देखो यहां आए थे तीव्र पुरुषार्थ करने, नाइट ड्यूटी में सारा समय चला जा रहा है। कभी बाबा ने पहरेदारों को भी याद किया था, क्या कहा था उनको, बहुत अच्छा है उनको सिक्योरिटी वाले। कभी बाबा ने नर्स को भी याद किया था कुछ दिन पहले, क्या करेंगे सर्जन भी तुम्हारे आशीष भाई चरणों में गिर जाएंगे, झुकते हैं हाँ झुकते तो होंगे। खुद ही अनुभव हो कि ये मेरा भाग्य है कि मुझे ये काम करने के लिए मिला, ये सेवा किसी और को भी दी जा सकती थी पर मुझे दी गई, कितना बड़ा भाग्य है। सबसे पहली निशानी। दूसरी निशानी, दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरे उनकी चलन और चेहरे को देखकर ये कहेंगे कि ये कितने भाग्यवान हैं। मधुबन निवासियों के लिए बाबा ने कहा है कि मधुबन निवासी क्या दिखाई दे, उनका भाग्य दिखाई दे, त्याग दिखाई ना दे, दूसरों को लगे कि ये बहुत भाग्यवान आत्मा है, तो दूसरों को भी दिखाई दे। हम वर्ल्ड की स्टेज पर है, ये दूसरा। तीसरा, कहां रहेंगे वो गोदी में, कहां रहेंगे वो गलीचे में, कहां रहेंगे वो झूले में, ऊपर फरिश्तों की दुनिया में बुद्धि रहेगी, पाव इस धरती को नहीं छुएगा, ये मिट्टी में पाव नहीं रखेंगे, क्योंकि मिट्टी में क्या प्रॉब्लम है, मिट्टी में प्रॉब्लम क्या है, मिट्टी में गंदे हो जाते हैं, और क्या होता है मिट्टी में, हाँ बदबू भी है उसमें, और क्या कीटाणु घुस जाएंगे अंदर, चाइना से आने वाले और क्या है मिट्टी में, कीचड़ से क्या, दलदल, दलदल में फंसने की संभावना है। मिट्टी में क्या क्या चीज होती है, मिट्टी में गड्ढा होता है, दलदल होता है, और क्या होता है मिट्टी में, मिट्टी धूल मिट्टी से कपड़े खराब होते हैं, कांटे होते हैं उसमें, और क्या होता है, कंकड़ होते, चीटियां लाल लाल काटती है जबरदस्त। एक पुल बना हुआ है, अभी अभी सुबह सुबह नहाकर हाथी, मॉर्निंग बाथ, दस यार गुजर रहा है हाथी, देखता है सामने से एक सुअर आ रहा है, और जैसे उस सुअर को हाथी देखता है, पुल इतना ही है, हाथी पीछे हट जाता है और पुल के बाहर आ जाता है। सुअर को इतनी खुशी, मुझे तो पता ही नहीं था इतना मैं श्रेष्ठ सम्माननीय हूं और इतना शक्तिशाली हूं कि हाथी जैसा महाकाय प्राणी भी मुझसे डर कर पीछे हट गया। और ऐसी खबरें एक जगह नहीं रहती है। सुअर ने अपने दोस्तों को बताया, दोस्तों ने और पूरे जंगल में फैलाया, जंगल में फैल खबर फैलते फैलते हाथी के दोस्तों तक खबर फैल गई, और जो हाथी के शुभ चिंतक थे कि हमने सुना है तुमने हमारी जाति का नाम मिट्टी में मिला दिया, तुम एक सुअर से डर गए, पीछे हट गए। हाथी का क्या उत्तर था? मुझे सुअर से डर नहीं है, मैं चाहूं तो सुअर को तो अपने पैरों के नीचे कुचल देता, पर वो गंदा था, मैं नहीं चाहता था कि उसकी गंदगी मुझे स्पर्श हो, इसलिए मैं पीछे हट गया। ऐसा नहीं कि हम उससे डरते हैं, संसार गंदा है, यहां गंदी दुनिया है, गंदी बातें, गंदी गंदा वातावरण, गंदी किताबें, गंदा मीडिया, गंदी बुक्स, मीडिया, सब कुछ गंदगी है। ये गंदगी का सागर है संसार, पाप का सागर है, विषय वैतरणी नदी है, कुंभी पार्क नरक है। ऐसा नहीं कि हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन इनके सामने दिखाए, इन्हें स्पर्श ही नहीं करना है क्योंकि ये गंदे हैं, रसातल में चले जाएंगे। टेस्ट ऑफ लस्ट एंड फॉल ऑफ मैन, उसको टेस्ट करते ही गिरावट चालू होती है। इसलिए क्या हो जाना है, तुम महान हो, जाओ, जाने दो उसे। तो भाग्यवान आत्माओं की तीसरी निशानी, वो देह को स्पर्श नहीं करते, मिट्टी को स्पर्श नहीं करते, दलदल को, कीचड़ को हाथ नहीं लगाते, ऊपर रहते, धरनी के ऊपर। उनके पाव बुद्धि के पाव, बुद्धि कभी इन विकारों में रमन नहीं करती। अगर विचार आ जाए तो खुद को तुरंत ठीक करते हैं। और गंदगी में है क्या, कौन सा सुख है कीचड़ पीने में? अनित्यम असुखम लोकम। तो भाग्यवान अर्थात देह का चिंतन नहीं, भाग्यवान अर्थात कौन सी मिट्टी, देह की मिट्टी, देहभान की मिट्टी, देह अभिमान की मिट्टी, देह के संबंध, देह के संपर्क, देह की बातें, देह की वासनाएं, देह के भोग, देह की इच्छाएं, देह की तृष्णाएं, देह की वस्तुएं, देह के संबंध, देह के धर्म, देह की भाषा, देह की भूमि। हम भी पंजाब से, तुम भी पंजाब से, चलो थोड़ा साथ साथ चक्कर लगाते हैं। हम भी महाराष्ट्र से, तुम भी महाराष्ट्र से, हम भी बंगाल से, तुम भी महाराष्ट्र से, दोस्ती किस आधार पर? भूमि के आधार पर, भाषा के आधार पर। अपने गांव का दिखा तो चले उस भाषा में बात करते। ब्राह्मणों की भाषा कौन सी है? हिंदी, अलौकिक। तीन भाषाएं बताई थी उस वरदान में, 7 जनवरी 2020 वरदान। भावना की भाषा, नैनों की भाषा और संकल्प की भाषा, ये है रूहानी अलौकिक योगी जीवन की भाषा। इस भाषा के अभ्यासी बनो। पर फिर भी बोलचाल में भाषा की आवश्यकता है। जैसे कल कहा था, नमस्ते के लिए बोलना तो पड़ता है, तो यहां पर भाषा है हिंदी। अपने ग्रुप्स गुट नहीं बना के रख देने हैं, ये हमारे गांव का, ये हमारे देश का, ये हमारा, ये हमारा, कौन हमारा, सब हमारे, या तो कोई भी हमारा नहीं। ये दुनिया क्या है? हमारे रिश्तेदार कहां रहते हैं? अगर कोई पूछे आपके रिश्तेदार कहां कहां रहते, कोई यहां कोई वहां, सब रिश्तेदार एक ही गांव में रहते हैं, और उस गांव का नाम है मतलबपुर। मतलबपुर मतलबपुर अर्थात सारे रिश्तेदार एक ही जगह पर रहते हैं। तो देह की मिट्टी से परे, यह है तीसरी निशानी। चौथी निशानी, वो मिट्टी से नहीं खेलते कभी, किससे खेलते? ज्ञान रत्नों से खेलना अर्थात, ज्ञान रत्नों से खेलना अर्थात, अरविंद भाई चिंतन मनन ज्ञान रत्नों से खेलना अर्थात, कमलेश भाई सागर की गहराई में जाना, सागर रत्नों से खेलना अर्थात, चिमन भाई जी एक्सचेंज लेन देन करना, चर्चा करना। रत्नों को देखना और देख देख के क्या होना, ओहो क्या कहना, ऐसे नहीं, अच्छे से बोलो। ज्ञान रत्नों को देखकर क्या होना चाहिए? खुशी। साहूकार जो होता है ना, बीच बीच में अपनी तिजोरी जाके देखता है, कितनी खुशी होती है उसको। वो तो बड़े ना बड़े, वो दूसरी पर जो है उसको बार बार देखता है, देख कर ही उसे आराम मिलता है, सुकून मिलता है। आहा, तो बुद्धि में क्या क्या भरा हुआ है, बीच बीच में जाके देखना चाहिए। तो ज्ञान रत्नों से खेलना अर्थात उन्हें देखते रहना, उनको हाथ लगाते रहना, उनको हाथों में लेते रहना, उनको देते भी रहना, चिंतन करना, मनन करना, अध्ययन करना, बढ़ाना उनको, धारण करना, उसकी गहराई में जाना। और मिट्टी से क्या करना, मिट्टी से खेलना अर्थात क्या करना, मिट्टी से खेलना अर्थात क्या, खेलते समय क्या करते, इससे खेल रहे तो क्या करना है, खेलते हैं तो सबसे पहला क्या करते, हाथ लगाते हैं उसको, एक और क्या करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं उसके साथ, बनाते बिगाड़ते, मुंह में लगाते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं मिट्टी के साथ। मिट्टी खाना भाग्यवान आत्माओं की चौथी निशानी है, वो कि देह रूपी मिट्टी के साथ वो खेलते नहीं, ना तो अपनी देह के साथ खेलते हैं, ना किसी और की देह के साथ खेलते, और ना ही संकल्प करते हैं मन में, ना ही कल्पना करते। एक है वास्तव में खेलना, एक है कल्पना में खेलना, पर कल्पना में कुछ करना और वास्तव में करना, दोनों का प्रभाव शरीर में समान है। सेंशुअल फैंटसीज सबसे बड़ा रोग वर्तमान में सभी युवकों में जो है वो क्या है, सेंशुअल फैंटसीज, अर्थात मन ही मन कल्पना करना, मन ही मन कामुकता की कल्पना। देह का आकर्षण योगियों के लिए सबसे बड़ा शत्रु है। कामुकता जैसी कोई व्याधि संसार में नहीं, सबसे बड़ी व्याधि कामुकता, और देह का आकर्षण सबसे बड़ा दुश्मन, शत्रु है सबसे बड़ा। इसलिए मिट्टी को छोड़ दो, और मिट्टी तभी छूट सकती है जब कोई अच्छा सा खिलौना मिल जाए। इंद्रिय सुखों को छोड़ने के लिए कितना पुरुषार्थ किया हुआ है लोगों ने। ब्रह्मचर्य की हर किताब में एक ही लिखी हुई है, ये देह जो है मिट्टी है, ये है ये है, अरे पर करना क्या है आगे, ये लिखा ही नहीं है उसमें। बुराई तो बहुत की है, काम विकार की, परंतु छूटना कैसा है वो लिखा ही नहीं है। बहुत बुराई की है, ये देह में कीचड़ है, ये देह में मलमूत्र है, पर करना क्या है अब। वास्तव में आत्मा को देह का आकर्षण नहीं है, आत्मा को आकर्षण है सुख का। आत्मा की सबसे गहरी प्यास सुख की है, सबसे गहरी प्यास प्यार की है, सबसे गहरी प्यास मिलन की है, परंतु वो मिलन परमात्मा के साथ का मिलन की प्यास है, पर वो हो नहीं पाता है। अतीन्द्रिय सुख उससे वो वंचित रहती है, तो फिर इंद्रिय सुखों के पीछे भागती है, और उस इंद्रिय सुख में एक पल के लिए, एक क्षण के लिए अशरीरीपन है उसकी चरम अवस्था में, और उसी चरम अवस्था को पाने के लिए बार 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 उस टेस्ट में आकर्षित होता है। उसका स्वरूप बहुत साधारण सा हो सकता है, तो सबसे गहरा भी काम विकार हो सकता है। बात करना, देखना, यहां से वो चालू होगा, बार बार देखना, अच्छा लगना, विचार करना, उस व्यक्ति की प्रशंसा करना, ऊपर से आकर्षण अलौकिक दिखाई दे रहा है, पर अंदर से प्यास देह की है, और वो देह भी इसलिए क्योंकि उसमें से भी अतीन्द्रिय सुख चाहिए, पर वास्तव में इंद्रिय सुख में आत्मा फंस जाती है। बड़ी डीप फिलोसॉफी है, क्यों सारा संसार पागल है विकार के पीछे, क्यों? क्योंकि कुछ तो है, और वो कुछ है सुख। सुख, सुख की प्यास है आत्मा को, परंतु दिशा गलत है, उसमें वो सुख मिलता ही नहीं है। सुख प्राप्त करने के बाद फ्रस्ट्रेशन, उसमें पता चलता है प्राप्त करने के बाद दुखी ज्यादा मिल गया, कुछ और ही मिल गया, और जितनी कल्पना की थी इतना मिलेगा, उतनी नहीं मिली। अपेक्षा भंग, बेचैनी, रेस्टलेसनेस, मेंटल रेस्टलेसनेस, स्ट्रेस, और शक्तियां खत्म, फिर उदासी, फिर आत्मग्लानी। हम इतना पवित्र जीवन जी रहे हैं बचपन से, फिर भी ऐसा संकल्प कहां से आ गया, कहां से आया? अर्थात वो पहले से था, तुम्हें पता नहीं था बस। क्योंकि आत्मा की प्यास सुख की है। अगर काम से मुक्त होना है उसका एक ही मार्ग है, योग। एक ही मार्ग है, तपस्या। आत्मा बैठ जाए, 8 घंटा बैठ जाओ, 4 घंटा बैठ जाए, और उसमें अतीन्द्रिय सुख में इतनी डूब जाए कि उससे निकलने के बाद उसको इंद्रिय सुख तुच्छ नजर आए, व्यर्थ नजर आए, वो है वास्तविक ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य से लड़ाई करना ब्रह्मचर्य नहीं है कि ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, हमको तो, हम तो इतने पवित्र है, हम तो ऐसे तेजस्वी है, इतने सारे आत्माओं के साथ हमारा संपर्क है, फिर भी कारण है अतीन्द्रिय सुख की कमी। आत्मा सुबह सुबह इतना डूब जाए अतीन्द्रिय सुख में कि उससे जब बाहर निकले इस संसार में तो यहां के सुख से क्या नजर आए, तुच्छ, गौन, मूर्खता। भाग्यवान आत्माओं की चौथी निशानी, वो मिट्टी से नहीं खेलते, उन्हें अच्छे नहीं लगते मिट्टी के खिलौने। क्यों? क्योंकि उसे आदत किसकी पड़ी है, रत्नों से खेलने की आदत पड़ी है। आदत की बात है बस, हमने किस आदत को लगाया इसमें, फिर मिक्स है। कभी रत्नों से खेलते हैं, सुबह सुबह रत्नों से खेलते हैं, रात होती है तो मिट्टी से खेलना चालू करते हैं, क्योंकि शाम का योग खत्म, क्योंकि सारा दिन सेवाओं में व्यस्त था, अतीन्द्रिय सुख हुआ मिला ही नहीं। सेवा में देहभान, सेवा में मैं मेरा तू तेरा, सेवा में लड़ाइया, सेवा में टकराव, इसने ये कहा उसने वो कहा, अतीन्द्रिय सुख कहां गया? सुबह सुबह मिला था थोड़ा बहुत 5%, वो दिन भर शाम तक खो गया, तो रात आते ही विकार का आकर्षण, रात आते ही सेंसुअल फैंटेसीज। सुबह राम, शाम रात को काम। दिन में शाम। चौथी निशानी, पांचवी निशानी, वो संपन्न होंगे, इच्छा मात्रम अविद्या होंगे। भाग्यवान आत्माओं की पांचवी निशानी, वो संपन्न होंगे। और इच्छा तभी नहीं हो सकती जब संपन्नता है, जब संपन्नता नहीं है तो इच्छाएं होती रहेगी, कुछ ना कुछ नई नई इच्छा है। किसी के पास कुछ नया देख लिया, ये शॉल कहां से ली है, क्या एक्स्ट्रा नहीं, कहां से लाई, हाँ इनको सबको मिलता है, हमको कोई देता ही नहीं, हमको क्यों नहीं देता, टोपी तो बढ़िया है। वस्तुएं में आंखें डूबती है, कोई भी नई जगह गई एकदम जाते ही दिखता है, ये कहां से लिया, वो कहां से लिया, ये हमारे वहां चाहिए, यहाँ के पर्दे बहुत अच्छे, हमारे सेंटर पर भी ऐसे ही पर्दे चाहिए, उधर तो मिलते नहीं, हम अभी यहां से लेके जाएंगे। दादी जान की कहती है ना विदेशियों से, अगर कोई विदेश जाता है, दूसरे देश जाता है और वहां से बिना खरीदी करके आ जाए तो दादी उसको कहेंगे निर्लोभी, नए स्थान पे जाने के बाद कुछ भी खरीद के ना आना। यहां एक बैग लेके आते और जाते समय 3 बैग लेके जाते, इतना खरीद के जाते हैं कि बात मत पूछो। नाम को सन्यासी और काम में गृहस्थियों से भी ज्यादा गृहस्थी खड़ी करके रखी है। बैग तो पूछो मत, ऐसा कोई है जो एक बैग लेके आए और एक ही बैग लेके गया आज तक मधुबन में? अब्दुल कलाम जब निकले 5 साल के बाद पार्लियामेंट, वो प्रेसिडेंट हाउस से, वो एक ही बैग थी जो लेके आए थे 5 साल पहले, उतनी बैग लेके बाहर, कुछ नहीं चाहिए। कोई दूसरा होता तो 5 साल में एक ट्रक भी कम पड़ता। कोई चीज में लोभ नहीं, चीजें आए और चीजें चली जाए, हमारी कुछ है ही नहीं, मात खाली, आने दो और जो लक्ष्मी चंचल है, हाथों में आए और हाथों से चली जाए। वस्तुएं चंचल है, हाथों में आए और हाथों से चली जाए तो ही आती रहेगी, पकड़ के रखा तो आना भी बंद हो जाएगा, बांट दो। इच्छा मात्रम अविद्या, संसार की कोई इच्छा नहीं है, संसार के वैभव की कामनाओं की। जब वो गीत में है ना, जब पहले तलब थी कि प्रसिद्ध हो जाऊं, पहले तलब थी कि सब मुझे जाने, अब तो गुमनाम ही रहना चाहता हूं, केवल तू मुझे जाने, बस बस तेरे समीप रहूं, राजी तेरी रजा में। मुझे ऐतराज क्या है, तेरे पास बिजलियां हैं, मेरे पास आशियाना, कोई इच्छा नहीं है। और इच्छा होगी तो एक ही इच्छा हो, कौन सी पंजू बहन, बाप समान बनने की इच्छा, या तो जगदीश भाई ने लिखा है एक ही इच्छा, और वो इच्छा है मेरी कोई इच्छा ही नहीं है। अगला छठवा, महादानी पुण्य आत्मा बनकर दूसरों का कल्याण करते रहना है। जो खजाना हमने पाया है, जो भाग्य हमको मिला है, अब उसे बांटना है, वितरित करना है, दूसरों को भी भाग्यशाली बनाना है, परंतु नब्ज देकर, पकड़ पकड़ के नहीं सुनाना है ज्ञान, बड़ा बेरहमी से ज्ञान का चाबुक ले ले कि सुनाते है। ट्रेन में तो बात मत पूछो, सोचते एक घंटे का सफर है, छह घंटे में एक घंटा अगर कोई मिल गया तो उसको सीधा आत्मा हो से चालू करते, लास्ट ब्रह्मचर्य तक ही छोड़ते, बेचारा दुखी हो जाता है आखिरी में, कहते अगर खतरनाक ब्रह्मचर्य को तोड़ा तो, वो बेचारा पहले ही गमगीन संसार के दुखों में डूबा हुआ और दुखी। ऐसा चाबुक लगाते ज्ञान का ट्रेन में तो बात मत पूछो, रहमी बेरहमी के साथ। वो कहते अभी अभी हम वहां से जाके आए, सब देख लिया, वो कहते देखा होगा मैं सुनाता हूं, प्रजा तो मुझे भी बनानी है ना। और बाबा ने भी कहा है सेवा करो, पर बाबा ने यह भी कहा है कि देख के, एक भाई था ट्रेन से जा रहा था, वो पूरा चुपचाप बैठा है, उसको दूसरा पूछता अरे तुम सेवा नहीं करते हो ट्रेन में, वो कहता है पत्थर पर मैं कभी अपने रत्न नहीं फेंकूंगा, मेरे पास रत्न है, ये पत्थरों पे थोड़ी फेंकूंगा मैं। देख के सेवा करनी होती है, किसी को भी सुनाना चालू हो गया, झगड़ा हो जाता है कई बार तो। किसको लेकर, तो कल्याण करना छठवीं निशानी। सातवीं निशानी ताज, तख्त और तिलक, उनके पास ताज होगा, कौन सा, जिम्मेदारी का ताज, पवित्रता का ताज। जितनी पवित्रता अखंड होगी, स्थिति का आधार हमारी सेवा का आधार हमारी स्थिति है, वास्तव में हमारे शब्द कम सेवा करते हैं, स्थिति अधिक सेवा करती है, हमारी प्यूरिटी ज्यादा सेवा करती है, जो सेवा केंद्रों में प्यूरिटी बहुत ज्यादा है वहां पर सेवाएं स्वतः ही होती है, पर जहां मुख्य व्यक्ति हिल रहा है, या तो जो बाकी है वो हिल रहे हैं प्यूरिटी में, वहां सेवाएं कितनी भी करो और रेगुलर नहीं होते वहां पर। ताज तिलक तख्त, अच्छा तख्त कौन सा, अकाल तख्त, तिल तख्त, राज अधिकार का तख्त, सेवा का तख्त, वो तीन छोड़ के उस पे आज चिंतन करना। फूल तख्त, तिलक रोज बाबा से तिलक लेना है सुबह सुबह, कौन सा तिलक लेंगे, कन्हैया भाई कौन सा तिलक लेंगे, हाँ जबरदस्त, क्या सफलता का तिलक, और कौन सा तिलक लेंगे, प्यूरिटी का तिलक, और थोड़े नए तिलक बताओ, जो कमी है उसको बढ़ाना, हाँ अच्छा वो तिलक, और नया तिलक लेना है कोई, एक ही एक तिलक लेते रहेंगे ना, तिलक ले भी रहे और नींद भी कर रहे, पवित्र भव, मास्टर सर्वशक्तिमान भव, महान आत्मा भव, विजयी भव, निर्विघ्न भव, ऐसे रटे हुए सारे शब्द, नए शब्दों की आवश्यकता है, नव शब्द, न्यूलॉजिज्म, तब आत्मा जागती है, वही 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 सुनते सुनते। मास्टर योगेश्वर भव, ऐसे थोड़े नए चाहिए, कड़क वाले चाहिए। अगला आठवा त्याग, भाग्य अर्थात त्याग, त्याग के सिवा भाग्य नहीं आएगा, तो वो हर चीज जो हमारे और भगवान के बीच है उसको क्या कर देना है, विष की तरह त्याग कर दो उसका, वो हर चीज जो मेरे और भगवान के बीच में खड़ी है, वो चाहे कोई सेवा हो, वो चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई संबंध हो, वो चाहे कोई स्मृति हो, कोई कल्पना हो, तलवार निकाल के काट दो संबंध को। राम आगे चल रहे, पीछे लक्ष्मण, बीच में सीता, ब्रह्म जीव बीच सीता, सीता बीच सीता जैसी। अगर लक्ष्मण को राम तक पहुंचना है, दो मार्ग है भक्ति मार्ग में, ये कहते हैं। एक तो सीता के शरण में चल जाओ, अर्थात भक्ति मार्ग की देवियों के शरण में जाओ। दूसरा, सीता को काट दो, ये संन्यास मार्ग है। माया को ही हटा दो वहां से, ना माया नाम रूप है, ब्रह्म जीव बीच सीता जैसी, वो जो है ना बीच में जो आ रही है उसको ही हटा दो, तो राम तक पहुंचोगे। या तो उसी के शरण में चले जाओ, ये है, एक है भक्ति मार्ग, एक है संन्यास मार्ग। तो जो भी बाधा है, जो अगर वो व्यक्ति है, कुछ भी है, मन से उसको त्याग कर दो। महात्मा गांधी ने अपनी जीवन कहानी में लिखा है, 1906 में मैंने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा की अपनी पत्नी के साथ। वैसे संकल्प मुझे 1901 से ही चालू था, पर 6 में ऑफिशियल प्रतिज्ञा की। और उन्होंने लिखा, आज इसको 20 साल हो गए, 30 साल हो गए हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने वो प्रतिज्ञा ली थी, क्योंकि उसके बाद का जीवन बहुत सुखद हो गया। वहां जो संघर्ष चालू था 1901 तक, उसके बाद सोच रहा था करूं 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 करूं, पर होता नहीं था। पर यहां पर ऑफिशियल प्रतिज्ञा ले ली, उसके बाद में जीवन सुखद हो गया। और आज इस बात को 30 साल हो गए, ऐसे भी लिखा है उन्होंने। अगला, त्याग। तो क्या करना है? त्याग देना है। कैसे त्यागेंगे? धक से। एक व्यक्ति कह रहा है मुझे संन्यास लेना है, मुझे संन्यास लेना है, रोज अपनी पत्नी को कहता है मुझे संन्यास लेना है, मुझे संन्यास लेना है, मुझे संन्यास लेना है। पत्नी का भाई आता है एक दिन, वो कहता है ऐसे थोड़ी संन्यास लिया जाता है। नहीं सॉरी, उल्टा है, पत्नी का भाई कह रहा है कि मुझे संन्यास लेना है, संन्यास लेना है, संन्यास लेना है। पति कहता है तुम रोज रोज कहते हो, ऐसे थोड़ी संन्यास लिया जाता है। वो कहता है कैसे लू फिर? वो कहते देखो ऐसे। पति गया, वापस कभी नहीं आया, धक से छोड़ दिया तो छोड़ दिया। वो भी है, दुखी था पति, दुखी रहते हैं। एक गधा था, तो उसके मालिक ने उसे ट्रेन किया था, उस गधे को क्या कहने के लिए, हाजी 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 कहने के लिए। इतना प्रशिक्षित किया उस गधे को कि वो हर बात में हाजी करता, और फिर वो गधे को बड़ी बड़ी जगह पर ले जाता और दिखाता कि देखो मेरा गधा कैसा हाजी कहता है हर बार में। एक व्यक्ति आता है, मैं इसे नाजी कह के, इससे नाजी कह के कहलवा कर रहूंगा। तो कहलवा दो, बहुत प्रशिक्षित है, 20 साल की ट्रेनिंग है। 20 साल कितना जीता है गधा? 10 साल। तो वो घोड़े के कान में, वो गधे के कान में जाके कुछ कहता है, उसके बाद में गधा कहता है ना जी ना जी ना जी। क्या कहता होगा आप बताओ? गधे से कहता है क्या शादी करोगे? तो वो कहता है नहीं ना जी ना जी ना जी। तो व्यक्ति कहता है आखिर तुमने ऐसा कहा क्या उसके कान में? वो कहते हैं मैंने उसको कहा कि शादी करोगे, और उसने एकदम बोले कैसे? अरे वो गधा तुम्हारा गधा है ना, मेरे घर के सामने ही रहता है और रोज मेरा जीवन देखता है। गधे को भी समझ में आ गया है कि संगम युग पर शादी अर्थात बर्बादी। हम एक कुमारों की भट्टी करा रहे, करने चालू होने वाली थी, तो बड़ी बहन जी आई और कही कि एक कुमार है, उसकी एंगेजमेंट हो गई है। तो हमने कहा तोड़नी है क्या? नहीं। उसने कहा उसको बिठाए क्या भट्टी में? हमने कहा बिठाओ। तोड़ने जोड़ने का, तोड़ने का तो काम ही है हमारा, इधर से लाठी उधर से डंडा। यही तो काम है। क्या पता, हमने तो पूछा नहीं, भट्टी पूरी हुई बैठा होगा, पता नहीं क्या, कौन पूछे। तो हमने पूछा, इसलिए शायद पूछ रही होगी, वो पूछ रही थी बहन जी की बिठाना है कि नहीं। हमने कहा कुछ और कारण से पूछ रही है, इसलिए तो पूछा, तोड़नी है क्या? लास्ट निशानी, निराकारी निर्विकारी निरंकारी, तो भाग्यवान आत्माओं की ये कितनी निशानियों के अंदर होगी। भाग्यवान आत्मा अर्थात सबसे पहला उसके हर कर्म में भाग्य का अनुभव होगा, दूसरा दूसरों को भी चलन चेहरे में भाग्य का अनुभव होगा, तीसरा वो धरती से ऊपर रहेंगे, चौथा वो मिट्टी से नहीं खेलेंगे, पांचवा इच्छा मात्र अविद्या रहेंगे, छठवा पुण्य महादानी दूसरों का कल्याण करेंगे, ताज तख्त तिलकधारी रहेंगे, त्यागधारी रहेंगे, और नौवा निराकारी निर्विकारी निरंकारी रहेंगे। बाबा ने मधुबन भूमि की भी महिमा की है। क्या महिमा की? कि यहाँ पर तीर्थ स्थान है, श्रेष्ठ स्थान है, दो डिपार्टमेंट को याद किया, अनाज और सब्जी। तो चाहे कर्म छोटा हो स्थिति महान हो, जैसे तीर्थ यात्राओं में भी जाते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, सेवा करते सफाई करते हैं परंतु बहुत भाग्यशाली समझते अपने आप को। तो तुम भी यहां आए हो, तुम्हारे हर कर्म मधुबन में, हर कर्म में मधुबन में, हर कदम में, हर कर्म में वरदान से झोली भरते रहना है। तो यहां पर एक सेकंड और एक संकल्प भी वेस्ट न जाए। मधुबन की बात कही, बड़ा पावरफुल वाक्य है मुरली का। उसके बाद में कुमारों से कहा, कुमार अर्थात निर्बंधन, कुमार अर्थात तीव्र पुरुषार्थी, कुमार अर्थात सबसे बड़ा बंधन कौन सा है, कुमारों को, खाली कुमारों को नहीं है, सारी दुनिया को ही है। व्यर्थ संकल्प, पकड़ लेते कोई तो एक व्यर्थ बात और सोचते रहते दिन रात उसके बारे में, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, उसने मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र किया, मैं भी करता हूं, तो वो एक। और बाप कुमारों को और आगे क्या कहा, खाता पुराना खत्म, बाप समान, जैसा बाप वैसे बच्चे। फिर माताओं को क्या कहा, माता अर्थात त्यागी तपस्वी, माता अर्थात रहमदिल, माता अर्थात रहमदिल अर्थात सेवा करने वाली, माता अर्थात कल्याणी। बाबा ने कहा तुम जगत, जगत माता की जगदम्बा, जगदम्बा कहा या जगत माता का, देखो अभी थोड़ा काम करो, हाथों हाथ काम कर लो थोड़ा सा। तुम जगत माता हो तो तुम्हें जगत का सोचना है, तुम बेहद की सेवाधारी हो, बेहद का सोचना है, ये बेहद के बच्चों की सेवा करनी है, इसकी इसकी सेवा करनी है, इसकी बैलेंस भी रखना है। जगत माता, जगत जननी, जगन माता कहा जाता है हिंदी में, जगन माता। कल्याणी हो तुम, जैसे बाप विश्व कल्याणी है, तुम्हें भी विश्व कल्याण करना है। ऐसे कैसे, ऐसे भाग्यवान आत्माओं को, ऐसे ताज तक तिलकधारी आत्माओं को, ऐसे इच्छा मात्र अविद्या आत्माओं को, ऐसे कुछ तो बोलो, ज्ञान रत्नों से खेलने वाली आत्माओं को, ऐसे मिट्टी से ऊपर रहने वाली आत्माओं को, ऐसे हर कर्म में भाग्य अनुभव करने वाली आत्माओं को, ऐसे गोदी झूला और गलीचे में चलने वाली आत्माओं को, ऐसे त्याग तपस्वी आत्माओं को, ऐसे कल्याणी आत्माओं को, महादानी आत्माओं को, विश्व कल्याणी आत्माओं को, रहमदिल आत्माओं को, ऐसे जगत माताओं को, ऐसे निराकारी निर्विकारी निरंकारी स्थिति में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे निर्बंधन रहने वाली आत्माओं को, तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, बाप समान आत्माओं को, ऐसे व्यर्थ से मुक्त रहने वाली आत्माओं को, ऐसे क्या करना, सेवा में बिजी, ब्राह्मण सेवा के बिना नहीं रह सकते। और एक सेकंड और एक संकल्प भी मधुमन में वेस्ट न करने वाली आत्माओं को, वरदानों से झोली भरने वाली और दूसरों को भी भराने वाली, ऐसी महाराष्ट्र के महान बनने वाले और महान बनने वाले और दूसरों को महान बनाने वाले, कर्नाटक में हर्षित रहने वाले और दूसरों को हर्षित बनाने वाले, यूपी में शीतला देवी बनकर शीतला देवी बनाने वाली आत्माओं को, शीतल नदियां, ठंडी ठंडी, ऐसी तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, ऐसे पीछे से कोई भी आवाज नहीं आया अभी तक, पूरी मुरली सुन ली है, ऐसे मौन में रहने वाली आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, ओम शांति।
तरह होश खो जाएंगे, पास आए तो मदहोश हो जाएंगे। मैंने सोचा न था गाएगी ये जमीन, मैंने सोचा न था।